15 June 1978.
इस मंत्र में कहा गया है ओम सहनावा। हम सब मिलकर के आपस में वार्तालाप करें, शंका समाधान करें, विचार करें, किन पदार्थों के किन तत्वों के निर्णय करें, परस्पर वार्तालाप करें, सहनोभुनक्तु, और सब मिलकर के इकट्ठे, जिसको प्रीति भोजन कहते हैं, सब मिलकर के इकट्ठे खाएं प्रेम से, सहवीर्य, और हम सब मिलकर के बल, शक्ति, पराक्रम, मेधा, सब प्रकार के गुणों को, धर्मों को, तत्वों को प्राप्त करें। तेजस्वी नाम धीतमस्तु, और इन सब को प्राप्त करके हम तेजस्वी बने, बलवान बने, शक्तिशाली बने, बुद्धिमान बने, हाँ विदुषा बने, और हमें किसी प्रकार का दुख, दर्द, कलेश आदि न होने पाए, ताकि हमारा जीवन सदा सुखी रहे। इस प्रकार के प्रार्थना इस मंत्र में की गई, ग्रंथों में लिखा है और जो आपको पढ़ा रहा हूँ। पर उसमें मुझे इतनी मुश्किल आ रही थी, जब मैं उस पर मनन करने लगा, गुरु के पास से आने का चिंतन करने लगा, कि ये जो सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर है, वहां पंचतन मात्राओं का भोग सूक्ष्म शरीर किस प्रकार करते हैं, अब ये तो गुरु ने दिखा नहीं, अगर ये सूक्ष्म शरीर उड़ रहे हैं, पंचतन मात्राओं का भोग करें, ये सूक्ष्म सृष्टि है, इतनी बात सारी कहाँ दिखा देते। उन्होंने तो ये इंद्रिय है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सब कुछ है। जब मैं इस पर अपना विशेष अध्ययन और अभ्यास करने लगा, तो शंका भी कि एक शरीर तो सूक्ष्म शरीर इस शरीर में वर्तमान है, जो इसको छोड़कर निकलकर आकाशमंडल, तो आकाशमंडल में रहने वाला सूक्ष्म शरीर जो है, वो किस प्रकार से तन मात्राओं का भोग करता, कैसे ये सृष्टि क्रम रहता है, कुछ समझ में नहीं। कई दिन मत्था मारता रहा, आखिर को मैंने उपवास किया, क्योंकि जो लगातार कुछ वर्ष और महीने दिन आदि जो सामने अभ्यास कर रहे हो, ये समाधान सब तुम्हारे सामने होते जाएंगे, और अगर कुछ बात समझ में आ जाए तो तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसा भी प्रसार या वो किया जा सकता है कि सूक्ष्म जगत के पदार्थ तुम सारे यहीं बैठे हैं, अनुभव प्रत्यक्ष कर लो। अब तो तुम छोटी छोटी बातों पर ही लगे कि ज्योति आ गई, ये आ गया, इसी पे लटके हुए हो, क्योंकि अभी कार्य क्षेत्र तैयार नहीं हुआ। मुसलमान और ईसाई तो पुनर्जन्म को नहीं मानते, पर हम तो पुनर्जन्म को मानने वाले हैं, क्योंकि एक बच्चा तो इतना बुद्धिमान माता पिता के गर्भ में पैदा होता है कि जन्म से ही वो इतना सिद्ध और इतना लायक होता है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक ही बच्चा उसी काल में दूसरे माता पिता के, वो इतना जड़मती, इतना जड़ बुद्धि पैदा होता है कि वो जट का जट ही रहता, उसकी अकल, विकास, बुद्धि, ज्ञान कुछ नहीं जाता। तो ये जो विभेद है इस प्रकार का कि एक गांव में आज 50 बच्चे पैदा हुए, भिन्न भिन्न बुद्धि के, भिन्न भिन्न विचारों के, भिन्न भिन्न अकल के, सारी बातें भिन्न भिन्न, तो ये जो विशेषता है कि एक बच्चा बचपन से इतना बुद्धिमान, योगी, सिद्ध निकलता है, तो ये पुनर्जन्म की विशेषता है, नहीं कि माता पिताओं की विशेषता है। बहुत से जट जमींदार माता पिताओं के घर में भी बड़े बड़े योगी, ज्ञानी उत्पन्न होते हुए देखे। हमारे माता पिता बिल्कुल बुद्ध अनपढ़ आदमी थे, और हमारे ज्ञान ध्यान को बहुत नफरत करते थे। जमीन आसमान, मेरे पूर्व जन्म की बात है, जो इतना बुद्धि का विज्ञान का विकास हुआ, उस घर में रहता तो जट का जट, बुद्ध का बुद्ध, गधा का गधा ही रह रहा था। तो ये पुनर्जन्म को ये बातें सिद्ध करती है। तो ये विज्ञान की परंपरा, जैसे आप इतने वर्षों से अध्ययन कर रहे हो उस विद्या को, वर्ष ही लगे ना, तो ये चलता रहेगा सिलसिला। अगर देव योग से आज किसी का शरीर छूट जाता है,
तो यही विचार है, ये संस्कार ये भावना लेकर चलोगे, फिर जन्म लेकर के इसी को आरंभ कर दोगे और झट योगी बन जाओगे। तो ये पुनर्जन्म की फिलॉसफी माननी पड़ेगी।
महाराज
आप लोगों को शौक नहीं है, कम से कम मेरे ग्रंथों को रोज 2 घंटे आपको अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार का विज्ञान श्रृंखलाबद्ध है मैंने अपने ग्रंथों में किया है, शायद एक आचार्य ने इतने प्रकार का विज्ञान अपने ग्रंथों में श्रृंखलाबद्ध नहीं किया होगा। जब मैंने हठ योग को लिया है तो बहिरंग योग में केवल हठ योग की ही बातें, बहिरंग योग का मतलब है आसन प्राणायाम आदि और प्रत्याहार तक और या यम नियम आदि, तो एक ही इन्हीं बातों का ही उसमें समावेश किया है और इन्हीं का विकास किया है, इन्हीं के विषय में लिखा है। जब आत्मा का आत्मविज्ञान नाम का ग्रंथ मैंने रचना की है तो सिर्फ आत्मा संबंधी बातें, आत्मा के विकास का, आत्मा के विज्ञान का श्रृंखलाबद्ध है। कहां कैसे किस प्रकार से चढ़ करके हम आत्मा के समीप पहुंचेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, वह एक ही। और ग्रंथों में तो विषय भिन्न भिन्न भी आ जाते हैं, पर मेरे ग्रंथों में तत्संबंधी विषय ही आते हैं, ये विशेषता मैंने डाली है। इसी प्रकार जब परमात्मा के विषय में ब्रह्म विज्ञान की बात आई है तो वहां ब्रह्म के विषय में ही श्रृंखलाबद्ध अलिप से लेकर ये तक, ऐसे लेकर क्षय तक, जैसे अक्षर क्रमबद्ध चलते हैं, ऐसे ही क्रमबद्ध विज्ञान का वर्णन किया है। और परमात्मा के विषय में सारे संसार के साथ उसका किस प्रकार का संबंध है, कैसे सुनिर्माण किया है, उसका जो भी कार्य भगवान का हो सकता है उसके सारे कार्यों का ऐसे लेकर अंत तक वर्णन किया है। तो इस प्रकार का वर्णन आपको किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ऐसे क्रम पर। फिर इसके बाद जैसे ये निर्गुण ब्रह्म ग्रंथ आ गया है, इसमें भी गोया परमात्मा को और आत्मा को मैंने निर्गुण ही सिद्ध किया है, क्योंकि जो गुणवान पदार्थ होगा उसको विकारवान मानना पड़ेगा। जिसमें गुणों की उत्पत्ति होगी क्रम पूर्वक, वो पदार्थ विकारी हो जाएगा। तो ये गुणों की उत्पत्ति तो मन और बुद्धि में होती है, इसलिए विकारवान होते हैं। आत्मा और परमात्मा में गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। और मैंने बहुत अनेक प्रकार की युक्तियों से, प्रमाणों से सिद्ध किया है कि सर्वथा निर्गुण सिद्ध किया है। तो इस प्रकार की विशेषता ही हमारे यहाँ तो दुनिया में कुछ ऐसा है कि कब्रों को पूजते हैं पीछे, जीतों को तो जूते मारा करते हैं, मूर्तों की कब्रें पूजा करते हैं, मंदिर बनाया करते हैं, फिर उनके गिरजे बनाते हैं, फिर उनके चर्च बनाते हैं, उनकी मस्जिदें बनाते हैं, उनके कुछ बनाते हैं। कोई समय आएगा हमारे ग्रंथों का जब प्रचार होगा, दुनिया के अंदर लोग अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे, तब हमारी योग्यता का पता लगेगा। ऐसे क्या पता लगता है। तो आप लोगों को भी समय टाइम वेस्ट न कर करके मेरे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनसे आपका नॉलेज बढ़ेगा और ये विद्या पढ़ने में समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। थोड़े थोड़े समय में पढ़ सीख के आप भी अपने चले जाओगे जहाँ से आए हो, तो उनकी सहायता आपको बहुत मिलेगी। जो बात यहाँ समझ में नहीं आती वहाँ आ जाएगी, यहाँ कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ वहाँ श्रृंखलाबद्ध एक एक विज्ञान की बातें आई है। तो 2 घंटे कम से कम जब तक यहाँ मेरे पास रहा करो, तुम जो नहीं खरीद सकते लाइब्रेरी से पुस्तक ले लो, वो पढ़ो, पर पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय भी तो यम नियमों के अंतर्गत स्वाध्याय भी तो रोज का नित्य का कर्म है, यम नियम, क्योंकि आप तो सारे योगी हैं, रोज यम नियमों का पालन करने वाले हैं, तो उनमें स्वाध्याय भी तो एक नियम है। तो स्वाध्याय इष्ट देवता संपर्योग, स्वाध्याय जो है ये देवताओं के साथ में संपर्योग, परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ, गुरुजनों के साथ संपर्योग संबंध बना देता है। तो इसलिए स्वाध्याय भी जरूर करना चाहिए, रोज 2 घंटे लगाया करो, व्यर्थ में इधर उधर बैठ उठ के गप्पे मारने से स्वाध्याय अच्छा होता है। मैं भी पहले बहुत स्वाध्याय करता, अब तो मुझे जरूरत नहीं, अब तो मेरे अंदर ग्रंथ पड़े सब। तो पहले पहले सबको जरूरत होती है, इसलिए नित्य प्रति 2 घंटा स्वाध्याय किया करो। वो जो आपका मैंने रखा है ना जाप आदि का, जो हुआ 2 से 5 तक का, उसमें स्वाध्याय आप किया करो, बहुत आपका नॉलेज बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और अकल आएगी, सारी बातें समझ में आएगी। जो आपको महीनों लग रहे हैं, फिर दिनों में ही आपका काम सफल हो जाएगा। कुछ उनकी मदद मिलेगी, कुछ मेरी मदद मिलेगी। इतने दिनों से, कई दिनों से इस क्लास के लिए जो प्राण विज्ञान की बात चल रही थी, प्राण के द्वारा आत्म साक्षात्कार की बात चल रही थी, तो कई प्रकार के साधन और तरीके बतलाए, प्राण के 70 प्रकार के वर्णन किया गया। अब इसी प्रकार ये जो दूसरी क्लास है, जो ज्योति के द्वारा, रूप के द्वारा परमात्मा, आगे तो प्राण के द्वारा स्पर्श करके परमात्मा को जानना था, अब परमात्मा का कैसा रूप है, अब रूप के द्वारा रूप को ही देखा जाएगा। जैसे जो आदमी सुजाता है वो ही रूप को देख सकता है, अन्यथा तो नहीं ना देख सकेगा, जिसकी आंखें नहीं है कि आंखें बंद। तो आंखों से परमात्मा के रूप को कैसे देखा जा सकता है, और वो कैसा रूप होना चाहिए जो आंखों का। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर 24 प्रकार की ज्योतियां वर्तमान है, 24 प्रकार के, 24 प्रकार की अग्नि कहो, या उसके रूप कहो, या उसके गुण कहो, या उसके धर्म कहो, या 24 प्रकार की अग्नि जो है, जो प्रकाशात्मक है, 24 प्रकार की वर्तमान है। तो मैं कल से क्रम पूर्वक इन अग्नियों का, इन प्रकाशों का वर्णन करूंगा, जिनके द्वारा तुम परमात्मा के रूप को देख सको। जब परमात्मा कोई पदार्थ है तो उसका रूप भी मानना पड़ेगा, कोई पदार्थ नहीं है तो उसका रूप भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा चेतन सत्ता है, उसका रूप मानना पड़ेगा। तो उसके रूप तो सुजाखा ही आदमी देख सकता है ना, अंधा तो नहीं देख सकता किसी के भी रूप को। तो अंधे के लिए तो ये सब अंधे बैठे हैं यहाँ इस क्लास में, इन्होंने तो प्राण के जरिए परमात्मा को स्पर्श करना माना, और ये आंखों वाली क्लास बैठी है, अब ये आंखों से परमात्मा को देखेगी कैसा परमात्मा है। तो कल से इस विज्ञान का वर्णन किया जाएगा।